Oh no, not you. Who continues working?
What happens? Who, you know, who's doing, you know, doing the Spanish work?
Yes, yeah, yeah. Yeah, good question. And who are you anyway?
उनका प्रश्न था कल उनके गुट में जब चर्चा हो रही थी तो ये प्रश्न निर्माण हुआ कि अगर स्व या मैं होता ही नहीं है तो फिर काम कौन करते रहता है क्या होता है कैसे होता है
In a way it's quite simple, isn't it?
तो एक तरह से बहुत आसान है ये.
Your experience is of making choices, making decisions. Huh?
तो आपकी जो अनुभूतियाँ होती है कि आप चुनाव कर रहे हैं, आप कुछ निर्णय ले रहे हैं.
And that functionally is the way it happens.
और ऐसे ही इसी तरह से कुछ क्रियाएं घटित होते रहती हैं.
But the point is not that decisions don't get made.
लेकिन बात ऐसी नहीं है कि निर्णय लिए नहीं जाते.
The point is there's no permanent separate self.
तो मुद्दा ये है कि स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाला ऐसा कोई अलग सा स्व नहीं है.
So sometimes it's said that there is an experience of an empirical self.
तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि एक मतलब नित्य ऐसा स्व है इसका अनुभव होता है.
If you like a functional self.
ऐसा स्व जो खुद कुछ कार्य कर रहा होता है.
But it doesn't have any permanent reality.
लेकिन उस स्व की स्थायी ऐसी कोई वास्तविकता नहीं होती है.
You could look at it from an evolutionary point of view.
तो उत्क्रांति के दृष्टिकोण से आप इसकी ओर देख सकते हैं.
You think that animals have, of course, a perceptual and instinctual mind.
तो आप सोचते हैं कि जानवर जो है उनके अंदर चीजों को समझने की या ऐसे कुछ अंतःप्रेरित ऐसा उनका कुछ मन होता है.
They're able to form a picture of the world.
और वो दुनिया का एक चित्र निर्माण कर सकते हैं.
And that helps to serve their body's needs.
और उससे उनके जो शारीरिक जरूरतें होती है वो पूरी कर सकते हैं.
And then when human beings evolved, they evolved the capacity to think.
और जब मनुष्य की उत्क्रांति हुई थी तो उन्होंने सोचने की क्षमता का भी विकास किया.
You could say to form concepts.
और उन्होंने संकल्पनाओं का विकास करने का विकास.
That means they could take their experience and break it up into abstract notions.
तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपनी अनुभूतियों को ले सकते थे और उन्हें अलग अलग संज्ञा देकर उन्हें तोड़ सकते थे.
When I say they, I mean we.
और जब मैं वो कहता हूँ मतलब हम.
An animal, it just responds, it reacts to its situation.
तो प्राणी जो होता है वो केवल अपनी परिस्थिति को प्रतिक्रिया देता
है. It lives within an eternal now.
और अभी जो वर्तमान है उसका वर्तमान हमेशा कायम रहता है.
But because we can use concepts, we can free ourselves from the immediate experience.
लेकिन क्योंकि हम मतलब संकल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी तात्कालिक जो अनुभूतियाँ होती है उससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं.
You can think about your experience in the past.
आप भूतकाल के अपने अनुभव के विषय में याद कर सकते हैं.
You can even learn from your experience in the past.
और उन भूतकाल के अनुभवों से आप कुछ सीख भी सकते हैं.
You can think about the future. You can make plans for the future.
आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और भविष्य के लिए कुछ नियोजन कर सकते हैं.
An animal can't do that.
एक प्राणी ऐसा नहीं कर सकता.
It's just responding instinctively to its environment.
तो उसका जो वातावरण होता है उसको वो अंतःप्रेरित रूप से कुछ प्रतिसाद देता है.
Of course they can learn, but their learning is instinctive learning.
हाँ, वो निश्चित ही कुछ सीख सकते हैं लेकिन उनका जो सीखना होता है वो भी अंतःप्रेरणाओं पर आधारित होता है.
So as human beings we're able to, if you like, sort of pick up some of our experience and carry it around with us through concepts.
तो एक इंसान होने के नाते हम हमारे अनुभव का कुछ हिस्सा उठा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते और उन्हें संकल्पनाओं का स्वरूप दे सकते.
So for instance you may have learned something during these days.
तो उदाहरण के तौर पे इन दिनों में आपने कुछ सीखा होगा.
I've been hearing from people what they've learned.
और मैं लोगों से सुन रहा था कि उन्होंने क्या सीखा.
And it's different. Everybody takes something different.
और अलग-अलग बातें होती हैं. हर कोई कुछ अलग बात सीखता है.
So you put that into conceptual terms, into words.
और आप एक संकल्पनात्मक उसको रूप देते हैं शब्दों के सहायता से.
Then you can put them in your bag and carry them away with you.
और फिर आप उसे अपने बैग में डाल सकते हैं और अपने साथ लेकर जा सकते हैं.
And take them out later when you need them.
और फिर बाद में जब आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो आप उसे खोलकर देख सकते हैं.
So it's a major difference between the animals and the human being.
और इसलिए जानवरों में और इंसानों में बहुत फर्क होता है.
We're able to conceptualize our experience.
तो हम हमारे अनुभवों को संकल्पनात्मक रूप दे सकते हैं.
That means to abstract it and make generalizations about it.
तो हम उसके बारे में सर्वसामान्य ऐसे कुछ नियम बना सकते हैं.
Now one of the most interesting generalizations we make is I.
तो एक सर्वसामान्य जो नियम हम बना लेते हैं वो होता है मैं का.
I is an abstraction from our experience of being the agent of action.
तो कृति करने वाला कोई कर्ता होता है. इसका इस जो कल्पना को आप एक स्वरूप देते हैं वो स्वरूप यानी मैं होता है.
So that the abstraction of I gives us a tremendous evolutionary advantage.
और ये आई मैं की जो कल्पना होती है ये हमको उत्क्रांति के दृष्टिकोण से बहुत एक मतलब फायदेमंद होती है.
And we assume that I endures through time.
और हम ऐसा फिर सोच लेते हैं कि ये मैं जो है समय में निरंतर वैसे ही रहता है.
I think, well, when I was 2 years old,
तो जब मैं सोचता हूँ जब मैं 2 साल का था.
Actually, when I was 2 years old, I was almost an entirely different being.
तो जब मैं 2 साल का था तब मैं निश्चित एक बहुत ही अलग व्यक्ति था.
And I can think when I'm 10 years older.
और जब मैं सोचता हूँ कि और जब मैं 10 साल से बड़ा हो जाऊंगा.
So I think I as something lasting, something permanent.
तब मैं के बारे में ऐसा सोचता हूँ कि ये मैं हमेशा वहाँ पर है और जैसा है वैसा है.
But it's a conceptual abstraction.
लेकिन ये एक संकल्पनात्मक रूप पे सोची गई चीज है.
And like all conceptual abstractions, it can be very useful.
और हर संकल्पना की तरह ये संकल्पना भी हमारे फायदे की हो सकती है.
It enables me to see the continuity in my experience.
तो इससे क्या होता है कि मेरे अनुभवों की जो निरंतरता है वो मैं देख पाता हूँ.
But the problem is that I gets mixed up with attachment.
लेकिन समस्या वहाँ निर्माण होती है जब वो मैं मेरी आसक्तियों के साथ घुल मिल जाता है.
It gets mixed up with craving.
और वो तृष्णाओं के साथ उसकी मिलावट हो जाती है.
That's the problem.
और वहाँ समस्या निर्माण होती है.
As a functional concept, it's useful.
एक संकल्पना के तौर पे और हमें मदद होने वाली संकल्पना के तौर पे वो उपयोगी है.
And it does help us to make our decisions and to live our lives.
और हमारी निर्णय लेने में और हमारी जिंदगी जीने में वो हमारी सहायता करता है.
It enables me to talk to you about myself.
तो इससे होता है कि मैं आपसे मेरे अपने विषय में बात कर सकता हूँ.
But it's an abstraction.
लेकिन ये एक कल्पना है.
Do you see what I mean? It's a generalization.
तो एक सर्वसामान्य इसको रूप दिया गया है.
Actually, 60 years ago, 65 years ago, it's hard to speak of that as I.
तो 65 साल पहले जो मैं था उसका मैं के स्वरूप में बात करना बहुत मुश्किल है.
It's just an idea I carry that was me.
तो ये सिर्फ एक कल्पना है जो मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ कि वो मैं था.
A useful idea.
एक उपयोगी कल्पना.
Because it helps to explain the continuity of conditioned arising.
तो परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होने वाली जो एक प्रक्रिया थी उसका विश्लेषण करने के लिए वो सहायता प्रदान करती है.
But it's an abstraction, it's a concept.
लेकिन एक संकल्पना ही है, एक कल्पना है.
And like all concepts, it's only helpful, it's not reality.
और सारी कल्पनाओं की तरह ये उपयोगी है पर ये वास्तविकता नहीं है.
I hope you're getting my point. It's a little philosophical, if you like.
तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं क्योंकि ये बहुत तत्वज्ञान भरी बात है.
Maybe the essential point is the conceptualizing.
तो इसमें मुख्य बात ये है कि हम उसे संकल्पनात्मक बना देते हैं.
You know, the best example is the map.
तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है एक नक्शे का.
I've got to get to Pune this afternoon.
तो आज दोपहर को मुझे पुणे जाना है.
So if I've got a map, I can see I go this way, then I go that way, then I go that way.
तो अगर मेरे पास नक्शा है तो मुझे पता होता है कि मुझे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है और यहाँ जाना है.
But the map isn't the road.
लेकिन जो नक्शा है वो रास्ता नहीं है.
And just because I've mentally gone down the map, I haven't got to Pune.
तो सिर्फ मैं अपने दिमाग में उस नक्शे पे चला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुनः पहुंच गया.
It's a useful abstraction from the living experience of the road from here to Pune.
तो यहाँ से पुणे तक का जो रास्ता है, उस रास्ते का जो अनुभव है, उससे कल्पना लेकर वो निर्माण किया गया, बहुत अच्छा एक ऐसे संकल्पना है.
But if I take the map and say, look, I've been to Pune.
लेकिन मैं अगर नक्शा उठाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि देखो मैं पुणे पहुंच गया.
Or if I go on the road and I expect it to be red in color because that's what the color it is on the map.
या फिर मैं रास्ते पे जाता हूँ और चाहता हूँ कि नक्शे में लाल रंग का रास्ता है तो ये रास्ता भी लाल ही हो.
Or I say, oh, that hill wasn't there.
और मैं कहता हूँ कि ये जो यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहा है ये तो यहाँ पे नहीं था.
That bump in the road wasn't on the map.
तो ये जो उबड़ खाबड़ मतलब ऊपर आया हुआ हिस्सा रास्ते का ये तो यहाँ नहीं था.
Well, I've misunderstood what a map is.
तो फिर मैंने समझने में बहुत भूल कर दी कि नक्शा होता क्या है.
Because the map reduces reality to what I need to know.
तो नक्शा क्या होता है, वास्तविकता को उतना छोटा बना के आपके समक्ष पेश करता है, उतनी जानकारी उसमें होती है जितनी आपको मालूम होनी चाहिए.
So our concepts have the same function.
तो हमारी जो कल्पनाएं होती है उसका भी ऐसा ही कुछ कार्य होता है.
They enable us to handle our experience.
तो उसकी सहायता से हम हमारे अनुभवों को समझ पाते हैं.
If we weren't able to conceptualize, we'd just be animals.
तो अगर हम इन बातों को संकल्पनात्मक रूप नहीं दे पाते तो हम जानवरों की तरह ही होते.
I wouldn't be able to communicate with you.
मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाता.
Well, if I could communicate with you, it'd just be, you know, what is a monkey I heard has 50 different signs.
और अगर कुछ बता भी पाता तो उस एक बंदर की तरह ही होता जिसे 150 कुछ निशानियां पता है.
You know, there's one sign, I'm the top monkey.
तो उसमें एक निशानी उसकी है कि मैं सबसे बड़ा बंदर हूँ.
And the other sign is salam salam.
और बाकी के छोटे बंदर है सलाम सलाम बोलने.
Oh, this tree is good to eat from.
या ये पेड़ अच्छा है और इसका फल खाया जा सकता है.
It's a very simple abstract language, but it's very simple.
तो बहुत सामान्य सी संकल्पनात्मक भाषा और बहुत ही सरल है.
But our ability to abstract in concepts gives us tremendous power.
लेकिन हमारी जो क्षमता होती है कि बड़े संकल्पनाओं को निर्माण करने की, उससे हमें बहुत बड़ी ऐसी ताकत मिलती है.
India can send a spaceship to Mars.
तो भारत जो है मंगल ग्रह पर एक उपग्रह भेज सकता
है. It can build an atom bomb.
वो एटम बम बना सकता है.
Et cetera, et cetera.
और भी बहुत कुछ बना सकता है.
It can have a railway system.
उनकी अपनी रेलगाड़ी की एक प्रणाली हो सकती है.
It can have an internet.
उनके पास इंटरनेट हो सकता है.
We can organize a retreat.
वो एक शिविर का आयोजन कर सकते हैं.
You can listen to talks from some strange Englishman.
और कोई विचित्र अंग्रेज से आप कोई प्रवचन सुन सकते हैं.
Who came by an aeroplane.
जो हवाई जहाज से वहाँ पे आया.
If I was a dog, all you'd be doing is barking back at me.
अगर मैं कुत्ता होता तो आप क्या कर रहे होते, वापस मुझ पर भौंक रहे होते. मैं यहाँ से वो करता और आप वहाँ से करते.
Maybe we'd get enlightened, I don't know.
और ऐसे से शायद हमको बुद्धत्व की प्राप्ति भी हो जाती, पता नहीं.
But because we can conceptualize, we can communicate much more complex thoughts.
लेकिन क्योंकि हम संकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं तो बहुत जटिल से जटिल विचार भी हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं.
We can understand the world conceptually much more finely.
तो संकल्पनाओं के आधार से दुनिया को हम बहुत अच्छे से और बहुत सूक्ष्मता से समझ सकते हैं.
We can shape the future.
और हम भविष्य को आकार दे सकते हैं.
We can form an intention.
और हम एक उद्देश्य की निर्मिति कर सकते हैं.
The dog doesn't decide to do something.
तो ऐसे ही हम कुछ करने का निर्णय नहीं ले लेते.
It just does it.
वो हो जाता है.
And it's gone.
तो कुछ खुशबू आती है और हम चले जाते हैं.
A monkey sees a green leaf on a tree and just reaches out.
तो किसी बंदर को एक फल या पत्ता नजर आता है पेड़ पे और वो लपक लेता है उसको.
Doesn't think, that's an interesting leaf.
तो वो सोचता नहीं है कि बहुत खूबसूरत सा पत्ता है.
I know that leaf is good to eat.
और मुझे पता है कि ये खाने के लिए अच्छा पत्ता है.
I think I'll get it.
और मुझे लगता है कि मुझे उसे पाना चाहिए.
No, it doesn't do that at all.
तो इस तरह से नहीं होता है जानवर.
Sees it, it grabs.
वो देखते हैं और उसको तुरंत लपक लेते हैं.
Of course, it may not grab because of some instinctive inhibition or because of some sort of distant memory of an experience.
तो हो सकता है कि उसे ना लपके क्योंकि उनका अंतप्रेरित कुछ अनुभव होता है या उनकी पहले की कुछ याद उसके पीछे हो सकती है.
So this sort of abstraction from the undifferentiated flow of experience is conceptualizing.
तो संकल्पनाओं का निर्माण क्या होता है कि जो प्रक्रियाएं होती बहुत सारी जिसमें हम भेद नहीं कर पाते और उसको हम संकल्पनात्मक रूप दे देते हैं. I don't know what I said.
I was just trying you out, Bharti. Experience comes to us without any boundaries, huh?
तो बिना किसी सीमा क्षेत्र के अनुभव हमारी ओर आता है.
It's all just coming at us.
तो पूरे समय हमारी ओर आते रहता है.
Visual impressions coming at us.
तो दृष्टि के माध्यम से बहुत सारी छवियां हम तक पहुंचती है.
The ear is gathering information.
तो हमारा कान जो है वो हमारी जानकारी को इकट्ठा करते
रहता है. Skin is gathering information.
हमारी त्वचा जानकारी को इकट्ठा करते रहती है.
Smell, taste, it's all gathering information.
तो खुशबू है स्वाद जो है सब जानकारी को अंदर लेते रहते
हैं. It's an enormous flood of information.
तो जानकारी की एक बाढ़ सी आपके और आ रही होती है.
Well, you know the whole issue of virtual reality, huh?
तो आपको पता है जो कृत्रिम वास्तविकता है उसका एक बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है.
No, I'm straying into the area of computer science, and I know there's a computer scientist or two here.
और मैं अभी कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ. कुछ यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के तज्ञ हैं लोग.
But you can never reproduce virtual reality. Can never be reality.
तो जो ये कृत्रिम वास्तविकता होती है वो कभी वास्तविकता नहीं हो सकती.
You'd have to have a computer that was identical with the universe.
तो आपके पास फिर ऐसा संगणक होने की आवश्यकता है जो एकदम दुनिया जैसा ही है.
So we break it up into bits that we can manage.
तो हम फिर क्या करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं जितने टुकड़े को हम झेल सकते हैं.
You know, I'm thinking about what I'm saying to you.
तो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको क्या बात कर
रहा हूँ. So I'm shutting out a little bit of breeze coming on me here. I'm not feeling that.
तो यहाँ से जो हल्की सी हवा मेरी ओर आ रही है तो मैं उस अनुभव के और अपने आप को बंद कर दे रहा हूँ उसे महसूस नहीं कर रहा हूँ.
We are breaking up this flood of information into bits that we can use.
तो हम जो है ये जो जानकारी की जो बाढ़ है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं कि जितना हम इस्तेमाल कर सकें.
And we translate that into concepts.
और उसको हम अनुवादित करते हैं संकल्पनाओं में.
And among those concepts is I.
और इन्हीं संकल्पनाओं के बीच एक संकल्पना है मैं की.
And it's very useful.
और वो बहुत उपयोगी ऐसी है.
But it is not reality.
लेकिन वो वास्तविकता नहीं है.
Just as even if I say floor, that isn't reality.
तो अगर मैं ये भी कह देता हूँ कि फर्श तो ये भी वास्तविकता नहीं है.
Because this isn't just a floor.
क्योंकि ये केवल फर्श नहीं है.
It's something much more than that.
और ये उससे भी अधिक कुछ है.
And it's something that I can't even say.
और ये ऐसा कुछ है जिसके विषय में मैं बात भी नहीं कर सकता.
So the idea I is useful. It helps us to live our lives.
तो ये मैं की जो कल्पना होती है ये उपयोगी होती है और हमें हमारा जीवन व्यतीत करने में मदद करती है.
It helps us to organize our experience and our relationship to our experience.
तो हमारे अनुभव की संरचना करने में और उन अनुभव के साथ हमारा क्या रिश्ता है ये समझने में हमारी सहायता करती है.
But it is not reality.
लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती.
It's a simplification of reality.
वो वास्तविकता को दिया गया एक सरल रूप होती है.
And to simplify is always to falsify.
और किसी को भी सरल रूप देना हो यानी उसे एक झूठा स्वरूप प्रदान करने जैसा होता है.
So I hope this isn't too abstract.
तो मुझे लगता है ये बहुत मतलब ना समझ में आई या संकल्पनात्मक स्तर का नहीं.
But it's an important point.
लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा है.
As human beings, we've got a tremendous evolutionary advantage.
तो एक मनुष्य होने के नाते हमें जो उत्क्रांति का हमें बहुत लाभ मिला है.
Because we can form the idea of I.
क्योंकि हम मैं की ये संकल्पना का निर्माण कर पाए हैं.
That means we can now take charge of evolution.
तो इसका अर्थ ये होता है कि अब हम उत्क्रांति का जो है एक तरह से नियंत्रण कर सकते हैं.
That is our evolution.
और वो उत्क्रांति होती है हमारी खुद की उत्क्रांति.
There's not much I can do about a dog.
तो एक कुत्ते के उत्क्रांति के विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता.
And not much I can do about you, to be honest.
या आपके विषय में भी मैं कुछ नहीं कर सकता.
The only thing I can do, something, the only thing I can evolve is me.
तो एक ही चीज की मैं उत्क्रांति कर सकता हूँ, उत्क्रांत हो सकता हूँ, वो है खुद उत्क्रांत हो सकता.
And I can do that because I can think I.
और मैं इसलिए ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं के संदर्भ में सोचता हूँ.
So I can think in terms of working on myself.
तो इसलिए मैं स्वयं पर कार्य करने के संदर्भ में इस तरह से बात कर सकता हूँ.
I can think in terms of trying to shape karma.
और मैं अपने कर्म को आकार देने के संदर्भ में बात कर सकता हूँ.
But the strange thing is that ultimately I'll have to let go of that concept.
लेकिन विचित्र बात यह है कि अंत में ये जो संकल्पना है इसे मुझे छोड़ भी देना होगा.
Ultimately I'll have to let go of it and experience directly.
और अंत में जो भी अनुभव मुझे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है उस अनुभव को भी मुझे छोड़ देना है.
And that will be prajna.
और वो प्रज्ञा होगी.
So you could say that we use I to get beyond I.
तो हम कह सकते हैं कि मैं का इस्तेमाल करता हूँ मैं से परे जाने के लिए.
So I don't know whether that answers the question coming from your group. You probably gave an answer like of that kind.
तो मुझे नहीं पता कि आपके गुट में जो प्रश्न निर्माण हुआ था उसका ये उत्तर हो सकता है या नहीं, लेकिन आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं.
But yes, that's the best I can do in trying to give a broad picture of the issue.
तो इस मुद्दे का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करने के लिए ऐसा ही मैं उत्तर दे सकता हूँ.
I hope I haven't spread more confusion.
आशा करता हूँ कि अधिक संभ्रम मैंने नहीं निर्माण किया है.
I think a fuse has blown in Balji's mind. It's a long answer to a short question, but that's what I do. Don't laugh.
Record time.
What could you? About Ashubha. Yeah.
तो वो कहते हैं कि अशुभ के बारे में बहुत बात करते हुए मैंने आपको नहीं सुना, तो ये कहाँ पर इसका वर्णन मिलता है, क्या सूक्तों में इसका वर्णन पाया जाता है या नहीं, और उसके विषय में अधिक जानना चाहते हैं.
Yes, so that usually we speak about the three lakshanas.
तो हाँ, निश्चित ही आमतौर पे हम तीन लक्षणों के विषय में ही बात करते हैं.
But there's another list that is commonly used, which is the viparyasas.
लेकिन और एक मतलब सूची है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है विपर्यासों की सूची.
You remember I mentioned that we mistake the what is actually impermanent for something permanent.
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो अनित्य है उसको हम भूल से नित्य समझ लेते हैं.
And so on.
और इसी तरह से दूसरी बातें.
So that list of viparyasas contains the pairing of ashubha shubha.
और उस विपर्यासों की सूची में ये जोड़ी है शुभ और अशुभ.
So it says that we mistake what is actually ugly for beautiful.
तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो कुरूप है, बदसूरत है, उसको हम भूल से सुंदर या खूबसूरत समझ लेते हैं.
So yes, that's a quite common list.
तो ये बहुत ही आम ऐसी सूची है.
And it overlaps with the lakshanas.
और वो लक्षणों के ही साथ मिलती जुलती है.
I think it's particularly important because I think the aesthetic dimension is a very important for our modern cultural situation.
तो मुझे ये महत्वपूर्ण ऐसा लगता है क्योंकि आधुनिक संस्कृति में मुझे इसका जो सौंदर्य से जुड़ा आयाम है वो महत्वपूर्ण लगता है.
And I think it's particularly the case in the West.
और विशेष से पश्चिम में ये स्थिति है.
Because in the West the strongest if you like spiritual tradition that is closest to the Buddha Dhamma is the artistic or aesthetic tradition.
क्योंकि पश्चिम में बौद्ध धर्म के साथ ही जुड़ी या उसके जैसे ही कोई अगर संस्कृति होगी आसपास की तो वो है कला की संस्कृति.
And our teacher Sangharakshita has written a book called The Religion of Art.
और हमारे जो गुरु है Sangharakshita उन्होंने कला का धर्म ऐसी एक किताब लिखी है.
And so I think that dimension is very important for us in the West.
और इसलिए ये जो आयाम है पश्चिम में मुझे लगता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
Actually, I think it's very important in India for slightly different but similar reasons.
तो मुझे लगता है भारत में ही कुछ अलग लेकिन थोड़े बहुत वैसे ही कारणों के लिए ये जरूरी है महत्वपूर्ण है.
But the main issue is that I think a cultivation of a sense of a higher beauty is a very important method of development.
So मुझे लगता है कि सौंदर्य के प्रति जो है एक उच्च स्तर की रुचि का निर्माण करना या विकास करना ये विकास का एक अच्छा माध्यम हो सकता है.
And well, ultimately, even you could say that nirvana or Buddhahood itself is the realization of true beauty.
और अंतिम तो ऐसे भी हो सकता है कि निर्वाण या बुद्धत्व जो है वो भी वास्तविक सुंदरता की अनुभूति होती है.
And the Buddha himself said something like that.
और बुद्ध ने खुद भी ऐसा कुछ कहा है.
Somebody came to him and said that is it that people are saying that you say that when you gain enlightenment you see the whole world as ugly.
तो ऐसा कहा जाता है कि कोई उनके पास आया और उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि लोग ऐसा कहते हैं कि आपने कहा कि जब आपको निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो आपको सारी दुनिया जो है वो बदसूरत नजर आती है.
Is that true?
तो क्या ये सच है?
That was his question in a question and answer session.
तो वो प्रश्न उत्तर का शायद सत्र था तो वो प्रश्न उनके सामने आया.
He said, no, that is not what I say.
तो उन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा.
He said, when you gain Bodhi, then you see what beauty really is.
तो वो कहते मैंने ऐसा कहा कि जब आपको बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तब आप ये देख पाते हो कि सौंदर्य या सुंदरता वास्तव में क्या है.
So in other words, he wasn't saying that everything's ugly, as it were, from a straightforward point of view.
तो एक तरह से वो जैसे हम सीधे सीधे किसी को बदसूरत या गंदा कहते हैं ऐसे वो नहीं बोल रहे थे.
What he was saying was that when you experience reality as it really is, then you know what beauty is.
तो एक तरह से वो कह रहे थे कि जब वास्तविकता को वो जैसी है वैसी आप समझ लेते हैं तब आप समझते हैं कि सुंदरता क्या है.
And the beauty that you find in art is a sort of an echo of that beauty.
और कला में जो आपको सुंदरता महसूस होती या दिखती है वो उस सुंदरता का एक प्रतिध्वनि होती है.
I've just been studying this material with Maitreya.
तो ये जो साहित्य है इसका अध्ययन मैं मैत्रीवीर के साथ कर रहा था.
And it was in my mind when I was listening to that Sarod concert with Ustad Ajmal.
और ये मेरे दिमाग में चल रहा था जब मैं उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन सुन रहा था.
And just every now and again I could there was something about the way he played, the combination of notes that seemed to hint at a beauty that was way beyond the notes.
तो जिस तरह से वो सरोद वादन कर रहे थे या वो दोनों को एक दूसरे के साथ मिला रहे थे तो उससे सुंदरता का मतलब ऐसा आभास निर्माण हो रहा था जो उस दोनों से भी कहीं ज्यादा ऊंचा था.
So yes, this theme is there definitely in the suttas.
तो ये जो कल्पनाएं इस सूत्रों में निश्चित ही हैं.
To be frank, the Abhidhamma and then the commentarial tradition has not really understood this.
तो बहुत ईमानदारी से अगर कहा जाए तो अभिधम्म और ऐसी जो परंपराएं हैं उन्होंने इस को वास्तव में नहीं समझा है.
Yes, it's missed a lot in the suttas. Yeah.
और बहुत सारे सूत्रों में इसे बस खो दिया गया.
There's a lot of things in the suttas that the later tradition really missed.
तो सूत्रों में ऐसा बहुत कुछ है जो बाद की परंपराओं को उसका महत्व समझना आने की वजह से उन्होंने खो
दिया. For instance, the importance of friendship.
उदाहरण के तौर पे मैत्री का जो महत्व है.
But it's there in the canon. You can see in the suttas rather.
लेकिन वो वहाँ पे है.
And you get many examples of the Buddha's appreciation of beauty.
और आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे बुद्ध ने सौंदर्य की सराहना की है,
usually of natural beauty.
और विशेष तौर पे जो नैसर्गिक सौंदर्य है,
but even of a song.
लेकिन एक संगीत की भी.
And very interesting, the Buddha gives a bit of musical criticism.
और ये बहुत रोचक है कि बुद्ध एक तरह से संगीत की आलोचना भी करते हैं.
He commends a singer and says that your words and your music were perfectly matched.
तो उन्होंने एक संगीत को अपनी आलोचना भी बताई थी कि आपके शब्द जो है और आपके जो क्या बोलते संगीत है वो एक दूसरे के साथ तालमेल में था.
So that the music didn't overwhelm the words and the words didn't overwhelm the music.
तो जो शब्द थे वो संगीत से बढ़कर नहीं थे या संगीत जो था वो शब्द से बढ़कर नहीं था.
So it's very interesting, a different aspect of the Buddha.
तो ये बहुत रोचक है, बुद्ध के अलग अलग आयाम हैं.
If you like, very aesthetically sensitive.
और वो सौंदर्य के प्रति बहुत सजग थे, संवेदनशील थे.
So there's a lot more I could say because there's a bit of a theme at the moment. Maitreya and I are working on this.
इसके बारे में मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूँ कि हम इसी विषय पे काम कर रहे हैं मैत्री विरोध में.
He's working on a PhD thesis on comparison of Buddhist aesthetics with some Western philosophers.
और वो PhD कर रहे हैं और बहुत कुछ पश्चिम के जो दर्शन शास्त्री हैं और बुद्ध का जो सौंदर्य के विषय में ज्ञान है उसको उसका तुलनात्मक वो अभ्यास कर रहे हैं.
ओके, हैप्पी, गुड.
आई एम
सॉरी,
आई चेक द वर्ड बुक्स
या आई एम सॉरी, आई एम नॉट हियरिंग यू वेरी वेल. माय okay. Well, if you like, there's a book published by Sangharakshita called The Religion of Art. And if you go to his website, sangharakshita.info, you can download a PDF of a number of papers by him on Buddhism and art. But I'm glad you asked that question. It's a bit in my mind at the moment. I think it's important also because for most people, some degree of aesthetic experience is something they're familiar with.
I'm lost.
Shall I reset the button?
Okay, say it again.
I think this discussion of Ashubha is important because most people have some experience of aesthetic pleasure.
तो मुझे लगता है कि ये शुभ और अशुभ का जो ये वर्णन है या बातचीत है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कला का हम सभी ने कुछ न कुछ अनुभव लिया हुआ है सुंदरता का.
And it provides a nearer analogy than meditation.
और ध्यान से भी ज्यादा जो है ये आपके अनुभव के करीब का या से सामंजस्य रखता है.
Because most of us have to struggle quite a bit to get into deep meditation.
क्योंकि बहुत गहरे ध्यान में जाने के लिए हम में से बहुत लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है.
But when you hear a really beautiful piece of music or a wonderful poem, you just respond.
लेकिन अब जब आप बहुत सुंदर ऐसे संगीत का टुकड़ा सुनते हैं या कोई काव्य पढ़ते हैं तो आप बस उसे प्रतिक्रिया दे देते हैं.
और कुछ
Yeah, I'm not going to do that.
So since Buddha's time, many people have been teaching Dhamma, practicing Dhamma, but we haven't heard of anybody attaining Buddha or becoming a Bodhisattva in this modern age.
Oh.
This is the first part of the question. And second part, that Subhuti is also practicing Dhamma from so many years, living a Dhamma life. So is he confident that he would become a Bodhisattva or like this?
Hmm. Am I confident that I will become or could become? Or have become. I remember somebody once asking Sangharakshita, you know, are you enlightened?
तो मुझे याद है एक बार किसी ने संगरक्षित को पूछा था क्या आपको बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है?
So he said, if I said I was, how would you know whether I was speaking the truth or not?
तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कहता हूँ कि हाँ हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ?
And if I said I wasn't, what difference would it make to you?
और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे नहीं प्राप्त हुआ है तो उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा?
So I follow that tradition.
तो मैं उस परंपरा के
I've got the escape route set by my teacher.
तो बाहर इस प्रश्न से बच निकलने का मार्ग हमारे गुरु ने हमें बता रखा है.
What I can tell you is that I've made progress in my life.
तो मैं आपको ये निश्चित तौर पे बता सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में विकास किया है.
I know that during my life I've made quite a bit of progress.
और मैं जानता हूँ कि अपने जीवन में मैंने बहुत दूर तक विकास किया.
That doesn't tell you how far I got because it doesn't tell you where I started.
तो इससे आपको ये नहीं पता चलता कि मैं कितना आगे आया हूँ क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मैंने शुरुआत कहाँ की थी.
Because if I've come 20 miles from 100 miles away, there's still 80 miles to go.
तो अगर मैं 20 मील चलकर आया हूँ 100 मील में से तो और भी 80 मील जाना बाकी है.
But if I've come 20 miles from 20 miles away, I've arrived.
लेकिन अगर 20 मील में से मैंने अगर 20 मील का सफर किया है तो मैं पहुंच चुका हूँ.
So I'm not going to try to say where I came from.
तो इसलिए मैं ये बताने का प्रयास नहीं करूंगा आपको कि मैंने कहाँ से शुरुआत की.
Probably not so different from most of you.
लेकिन आप में से बहुत लोगों जैसे ही मेरी शुरुआत की.
And just by practicing regularly over 40 years, I know I've made some progress.
और 40 साल से निरंतर नियमित अभ्यास करने से मैं जानता हूँ कि मैंने विकास किया है.
I'm more aware of myself.
मैं अपने विषय में अधिक सजग हूँ.
I'm more generally emotionally positive.
और मैं बहुत बार भावनात्मक रूप से सकारात्मक होता हूँ.
I have to say generally because Maitreya is here and he knows me very closely.
तो बहुत बार मुझे कहना पड़ता है क्योंकि मैत्रेय यहाँ है और वो बहुत बार मेरे साथ रहते हैं.
I'm generally understand things better.
और आमतौर पे मैं चीजों को अच्छे से समझ पाता हूँ.
And my understanding of the Dhamma has deepened.
और धम्म के बारे में मेरी जो समझ है वो भी गहरी हो गई है.
So that much I'm prepared to tell you.
तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ.
I know I've made some progress.
तो मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ विकास किया है.
But how much is difficult to say.
लेकिन कितना किया है ये बताना मुश्किल है.
You know, it depends whether you use Fahrenheit or centigrade.
तो आप फ़ारेनहाइट से मापते हो या सेंटीग्रेड से मापते हो इस पर भी वो निर्भर करता है.
I know, I remember myself and I know what I'm like now.
तो मैं जानता हूँ मैं कैसा था ये मुझे याद है और मुझे पता है कि अब मैं कैसा हूँ.
That's all that really matters.
तो इतना ही बस मायने रखता है.
The main thing is that you know that you're moving forward.
तो महत्व की बात ये है कि आप जानते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो.
At least mostly.
या कम से कम बहुत बार बढ़ रहे हो.
Because sometimes you also move back.
क्योंकि कभी कभी आपके कदम पीछे भी आ जाते हैं.
So yes, what I've seen in my time as a Buddhist and especially as a member of the order, I've seen many many people make a lot of progress.
तो मैंने संघ में जितना समय बिताया है तो मैंने अपने साथ के बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने बहुत हद तक विकास कर लिया.
Even some close friends of mine, I've seen make quite a bit of progress.
और मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, उनको भी मैंने देखा है कि उन्होंने काफी विकास कर लिया है.
You know, if you know people over time, you see them change.
तो जब आप लोगों को काफी अंतराल तक जानते हो तो आप जानते हो कि वो बदल रहे हैं.
And I'm quite sure that the same would be true for you.
और मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए भी वैसा ही सच होगा.
You can have a lot of confidence in this process.
और ये जो प्रक्रिया है इसमें आप बहुत विश्वास रख सकते हो.
But we certainly in our tradition consider it not very sensible to go around saying I've attained this, I've attained that.
तो हम हमारी परंपरा में ये विश्वास रखते हैं कि इसमें बहुत कुछ धरा नहीं रखा है कि हम जाए किसी को और ये बताएं कि मैंने ये प्राप्त कर लिया है, मैंने वो प्राप्त कर लिया है.
Because it confuses people.
क्योंकि इससे लोग संभ्रमित हो जाते
हैं. If I say I'm enlightened,
अगर मैं कहता हूँ कि मैंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया
है, you can't disagree with me, really.
तो आप एक तरह से मना नहीं कर सकते.
Every word I speak is the truth.
तो फिर जो मैंने बोला वो हर वक्त शब्द जो है वो सच है.
So it puts the relationship in a wrong basis.
तो वो जो हमारे बीच का रिश्ता होता है उसका बुनियाद और उसका आधार गलत हो जाता है.
It ceases to be a human relationship.
और फिर वो एक मनुष्य का रिश्ता होना बंद हो जाता है.
We generally say, let's take each other as we find each other.
तो हम आमतौर पर ऐसा कहते हैं कि एक दूसरे को हम उसी स्वरूप में स्वीकार करें जिस स्वरूप में वो हमें मिले हैं.
You know, get to know me.
तो मुझे जानने का प्रयास कीजिए.
See what I'm like.
और देखिए कि मैं कैसा हूँ.
You know, you're seeing me when I'm giving a talk.
तो आप मुझे देख रहे हो जब मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ.
What am I like at another time?
लेकिन दूसरे वक्त मैं कैसा होता हूँ.
If you pay Maitreya Nagarjuna some money, he might tell you.
अगर आप Maitreya Nagarjuna को कुछ रिश्वत देते तो आपको बताएंगे.
So, do you see what I mean? We don't think it's a good idea to go calibrating.
तो आपको नजर आ रहा है कि मतलब लोगों को मापने में कोई कुछ बात नहीं रखा है इसमें हम विश्वास करते हैं.
It's what is it to measure anyway, huh?
क्या हम किस बात का मूल्यांकन करेंगे, किसका नापतोल करेंगे?
But what you will see is that people who sincerely practice the Dhamma make progress.
लेकिन आप ये निश्चित देखोगे कि जो वाकई धम्म का आचरण करते हैं गंभीरता से वो विकास करते हैं.
Guaranteed.
इसकी गारंटी है.
As I always say, money back guarantee.
और जैसे मैं हमेशा कि पैसा वापस, पैसा वसूल.
If you think that your guarantee is valid, then go to Jivak and he will return your money.
और अगर आपको लगता है कि आपका गारंटी काल अभी समाप्त नहीं हुआ तो जीवक के पास जाइए, वो आपका पैसा लौटा देंगे.
It's just the same as if you drop something, it will fall to the ground because of the law of gravity.
तो ये ऐसा ही है जैसे ऊपर से अगर आप कोई चीज नीचे छोड़ते हो तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो जमीन पर गिर जाएगी.
If you make a skillful effort, you will develop.
अगर आप कोई कुशल प्रयास करते हो तो आपका विकास होता है.
If you follow the path of Shila Samadhi Pragya, you will develop.
अगर आप शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग का अनुसरण करते हो तो आपका विकास होता है.
Because it's simply applying principles that are in life.
तो क्योंकि ये इसी तरह से है कि आप अपने जीवन में कुछ नियमों को लागू कर रहे हो.
So it's a good question, but I'm sorry, I'm not going to answer.
तो अच्छा प्रश्न था लेकिन मैं उत्तर नहीं दूंगा. The first part of the question that we have not seen anybody being enlightened since the Buddha spirit.
Well, I thought I had answered that already by saying that we don't really look at things in that way.
तो मुझे लगता है कि मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ कि इस तरह से किसने क्या प्राप्त किया है उस संदर्भ में हम नहीं देखते हैं.
But the Buddhist tradition says that many many people have attained enlightenment since the Buddha's time.
लेकिन बौद्ध परंपरा कहती है कि बुद्ध के समय के पश्चात भी बहुत बहुत लोगों ने बुद्धत्व प्राप्त किया है. He's specifically concerned about this modern.
Well, I think I really have answered that. I'm saying that we don't think it's a good idea to go calibrating. It becomes confusing and it leads to guru worship.
तो हम इस तरह से मतलब मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में नहीं जाते हैं क्योंकि इससे बहुत संभ्रम निर्माण होता है और लोग एक तरह से फिर उस गुरु की आराधना करने लगते हैं.
India has plenty of gurus.
और भारत में पहले बहुत सारे गुरु हैं.
More than enough gurus for the whole world.
जितने पूरे दुनिया को जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा गुरु यहाँ पर.
In fact, it's one of India's chief exports is gurus.
और भारत में से प्रमुखता से किसी चीज का निर्यात होता है तो वो है गुरु.
And everyone is a jagat guru and a fully realized being.
सब लोग जगत गुरु है जिन्हें सब सर्व ज्ञान प्राप्त है.
Maybe they are, maybe they aren't. I don't know.
तो वो है भी या नहीं भी है मैं नहीं जानता.
But we think it's far better just to communicate the Buddha's teaching.
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम केवल बुद्ध की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाएं।
To practice it ourselves,
और खुद उन शिक्षाओं के अनुसार आचरण
करें। And in friendship work together to practice.
और एक मित्रता के नाते से एक दूसरे के साथ आचरण करने के लिए मदद करें।
Dr. Ambedkar, Dr. Babasaheb Ambedkar famously said, "The age of Mahatmas is past."
तो बाबा साहब ने बहुत अच्छे से कहा है कि महात्माओं का जो दौर है वो अब गुजर चुका है
let us be human beings together.
और अब हम सब एक साथ मिलकर मनुष्य बने
and we can probably help each other much more if we help each other as human beings.
और अगर एक दूसरे को इंसान के तौर पे अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं
and if we've got some degree of realization we'll be able to help others as a human being from that basis.
और अगर हमें स्वयं कुछ अनुभूति प्राप्त हुई है तो हम दूसरे इंसानों को उसके आधार पर उसी तरह कुछ मदद कर सकते हैं.
I hope that I probably haven't satisfied you, but I hope I've silenced you.
मुझे पता है कि मैंने आपको संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दिया है, पर मैंने आपको खामोश जरूर कर दिया.
I'm only joking. ठीक है, I've got the thumbs up. Thumbs up. Any more tricky questions? Boliye. Various
hindrances.
Obstacles, yeah. 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 Hindi mein? Boliye. Hindi mein.
वो कह रहे हैं कि बुद्धत्व क्या है इसके बारे में और बताइए, और दूसरा ध्यान में अलग अलग प्रकार के जो निवरण आते हैं, रुकावटें आती है, तो उन्हें दूर किस तरह से किया जाए इस बारे में बताइए.
Well, of course, I did explain what enlightenment was in the talks.
तो जो मैंने प्रवचन दिए उसमें मैं बता चुका हूँ कि बुद्धत्व किस तरह का होता है.
So please listen to them again.
तो उन प्रवचनों को दोबारा सुनिए.
On free Buddhist audio.
और ये प्रवचन आपको free Buddhist audio website पे मिल जाएंगे.
When they eventually get there.
वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे.
But if you remember, I said that first of all we saw that the wise person, that is the enlightened person, is compassionate.
तो पहले हमने देखा कि एक प्रज्ञावान मनुष्य जो जिसने बुद्धत्व प्राप्त किया होता है वो करुणावान होता है.
And then we saw that the enlightened person sees the conditioned world as anicca, anatman, and dukkha.
और फिर जो बुद्धत्व प्राप्त किया व्यक्ति होता है वो दुनिया, संस्कारित दुनिया को देखता है कि वो अनित्य है, अनात्म है और दुख है.
And then we saw that he sees the conditioned world as conditioned.
और फिर हमने देखा कि वो संस्कारित दुनिया की और इस तरह देखता है कि वो संस्कारित है.
And that conditionality works in two different ways.
और ये संस्कारितता जो है दो अलग अलग तरह से कार्य करती है.
So that's probably as much as we really need to know.
और इतना ही जानना हमारे लिए शायद पर्याप्त है.
But we did see that the Buddha is completely free from identification from any conditioned thing.
तो हमने ये भी देखा कि कोई भी जो संस्कारित चीज है उसकी पहचान से बुद्ध की पहचान एकदम भिन्न है.
So enlightenment is to be free from all identification with conditioned things.
तो जो भी संस्कारित चीजें हैं उसके संदर्भ में पहचान स्थापित करने से बुद्धत्व एकदम अलग है.
So if you want a handy generalization, enlightenment consists in wisdom, compassion and liberation.
लेकिन हमेशा आपके साथ रहे ऐसा वर्णन अगर आपको चाहिए तो बुद्धत्व में क्या होते हैं, प्रज्ञा होते हैं, करुणा होती है और
लिबरेशन,
विमुक्ति होती है, स्वतंत्रता होती है.
Of course, you've got to fully understand what those mean, and that's a larger question.
और लेकिन ये क्या है इसको आपको पूरी तरह से समझना होगा और ये बहुत बड़ा ऐसा प्रश्न है.
Then the second question is the obstacles, the hindrances.
और दूसरा प्रश्न था ध्यान में आने वाले रुकावटों के बारे में.
These are known as the nivarana.
और इन्हें निवारणों के तौर पे जाना जाता है.
And there are considered to be five principal hindrances to the meditative stage.
और ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए ऐसे कहा जाता है कि पांच प्रकार के निवारण होते हैं.
And I'm sure you'll all recognize some, if not all, of these.
और मैं मुझे लगता है कि इसमें से कुछ आपके जाने पहचाने होंगे, भले ही सब ना हो.
The first is craving.
तो पहला होता है तृष्णा.
It's raga.
और उसे राग भी कहते हैं.
That is the longing for something that you can identify with, that you can include in your identity.
तो ऐसी चीजें, किसी चीज की आसक्ति या तृष्णा के होने की, जिसे आप को लगता है कि मैं इसे अपनी पहचान में शामिल कर सकता हूँ.
Whether it's gulab jamun or a person.
फिर वो गुलाब जामुन हो सकता है या कोई व्यक्ति हो सकता है.
Or a status.
या कोई स्टेटस भी हो सकता है.
So many things that we crave.
तो बहुत सारी चीजें होती है जिसकी हमें तृष्णा होती है.
Because we think they're going to make us happy.
क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीजें हमें सुखी कर देगी.
So a lot of your mental distraction in meditation will be bound up with that.
तो आपका जो ध्यान में बहुत बार मन का विचलित होना होगा, वो इससे जुड़ा हुआ होगा.
Then there's द्वेष.
फिर द्वेष है.
Or प्रतिघ.
या इसे प्रतिघ भी कहते हैं.
Well, that's the opposite, isn't it?
तो ये एकदम इसके विरुद्ध होता है.
It's thinking about, dwelling upon, feeling that you want to push things away which seem to threaten you.
तो वो ऐसे विचारों में समय व्यतीत करना होता है कि वो जिन चीजों के बारे में आप ऐसा सोचते हैं, उन्हें दूर धकेलने के बारे में सोचते हैं जो आपको दुखी कर देगी.
Things that seem to threaten your identity.
तो ऐसी चीजें जिससे आपके पहचान को कुछ खतरा होता है.
Then there's a pair.
फिर एक जोड़ी होती है.
Three, which the third of the hindrances, which is a pair.
तो मतलब निवरणों में से तीसरा है और एक जोड़ी में होता है.
This is sthana and middha.
तो स्थाना और मिद्धा.
Just to quickly say that they're really the sort of dull, sleepy, depressed states.
तो निराश, बोझल, उदास ऐसी ये स्थिति होती है.
On the one side, it's a state of mental depression, mental lowness of energy.
तो एक तरह ये मानसिक, मतलब आपके ऊर्जा में जो कमी होती है वो होती है.
Just feeling heavy.
आप बहुत भारी महसूस करते हैं.
Or it's sleepiness.
या एक तरह से नींद महसूस होती है.
So you're meditating and suddenly you nod.
तो आप ध्यान कर रहे होते हैं, अचानक आपको झपकी आ जाती है.
It's quite common, of course.
और बहुत सामान्य है, आम है.
Sometimes it's simply caused by the fact that you haven't had enough sleep.
तो कभी कभी ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है.
But sometimes it's to do with blocked energy.
लेकिन कभी कभी आपकी जो अंदर बंदिश ऊर्जा होती है, उसका इससे संबंध होता है.
Then there's the fourth is another pair.
और चौथी एक दूसरी जोड़ी है.
औदत्य कौकृत्य.
और वो है औदत्य कौकृत्य.
औदत्य means a restless, excited state.
तो औदत्य का अर्थ होता है मतलब अति अस्वस्थ ऐसी अवस्था.
So you're sitting in meditation and you think, oh, I'm going to go do this. When I get home, I'm going to do that.
तो आप ध्यान में बैठे होते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ, मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, घर जाने वाला हूँ, घर जाके ऐसा करने वाला.
It seems to be a sort of positive state. You feel a little bit positive.
तो आपको ये थोड़ा सकारात्मक लगता है, अंदर से वैसा महसूस होता है.
Because you've got some expectation.
क्योंकि आपकी कुछ अपेक्षा.
But actually, it's restless. It's not stable.
लेकिन वो वहाँ पे अस्वस्थता होती है. आप स्थिर नहीं होते हो.
So you could say it's instability of mind.
तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये मन आपका जो है अस्वस्थ है.
Then there's kaukrutya.
फिर कौकृत्य होता है.
Which is your sense that things are not right.
फिर आपको उसमें ऐसा लगता है कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं है.
Sometimes it's just a general state of anxiety.
तो कभी कभी ये थोड़ी सी चिंता की सामान्य सी स्थिति होती है.
Worry.
थोड़ा आप चिंतित होते हो.
I know that, for instance, if you're a parent, you're often worrying about your children.
तो जैसे आप मतलब माता पिता हो, तो आप अक्सर अपने बच्चों की चिंता करते हो.
You're worrying about your job or something like that.
आप अपनी नौकरी की चिंता करते हो या ऐसी किसी बात की चिंता करते हो.
So when you're sitting trying to watch the breath, your mind is worrying about something.
तो जब आप बैठकर अपनी श्वास की ओर ध्यान देने का प्रयास करते हो, तो आपका मन इधर दौड़ते रहता है.
Or it's a sense that you've done something wrong.
या फिर ये ऐसी कुछ भावना होती है कि आपने कुछ गलत कर दिया है.
It may be even a sense of conscience.
तो ये आपके अंतर्मन की भी कुछ आवाज हो सकती है.
A remorse.
या एक पश्चाताप की भावना हो सकती है.
And actually, this is a skillful state.
और ये कुशल ऐसी भावना है.
But you need to do something about it.
लेकिन उसके विषय में फिर आपको कुछ करना पड़ता है.
But usually kalkrutcha is just a generalized sense of anxiety and something wrong.
तो लेकिन आमतौर पे कौकृत्य की स्थिति मतलब चिंता और अस्थिरता अस्वस्थता की स्थिति.
Some people are very prone to this tendency.
और इस प्रवृत्ति के कुछ लोग बहुत आदि होते हैं.
And then finally, the fifth one is vichikitsa, doubt.
और पांचवा जो है अंत में वो है विचिकित्सा यानी शंकाएं, शंका कुशंका.
What this means is not doubt in some theory or anything like that.
तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप किसी सिद्धांत के ऊपर शंका कर रहे हो या इस तरह की बातों पे.
It's an inability to commit yourself to something.
तो इसका अर्थ ये होता है कि आप किसी चीज के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होने में असक्षम हो.
Even to commit yourself to the meditation.
आप ध्यान के लिए भी अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते.
So you might say, well, maybe this meditation isn't right for me.
और आप सोचते हो कि शायद ये ध्यान मेरे लिए ठीक नहीं है.
Should it be done in these four stages?
क्या ये ध्यान इन्हीं चार चरणों में किया जाना चाहिए?
Shouldn't we be doing Maitri now?
क्या अभी हमें मैत्री का ध्यान नहीं करना चाहिए?
Or it can be even more vague than that.
या ये इससे भी बहुत विस्तृत ऐसा कुछ हो सकता है.
A general sense of not quite able to make up your mind and commit yourself.
तो ये एक आम ऐसी स्थिति होती है कि आपका मन किसी एक चीज पे एक चीज को तय नहीं कर पाता है और उसके लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर सकता है.
So recognize those.
तो क्या आप इन बातों को पहचानते हैं?
Unfortunately, I know that most people will be able to recognize them.
तो दुर्दैव से मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें अपने आप को देख पाते हैं.
And we've all got our favorite hindrances.
और हमारे अपने भी मनपसंद ऐसे कुछ निवरण होते हैं.
And some that we don't not so familiar with, huh?
और कुछ निवरण ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते.
For some reason, I don't seem to suffer much from anxiety.
तो कुछ कारणों की वजह से ये जो चिंता या अस्थिरता का निवरण है वो मेरे इसमें ज्यादा नहीं आता.
But I certainly suffer from excitability.
लेकिन जो उत्साहित अति उत्साहित हो जाना है उससे वो मेरा निवरण है.
So we've all got our favorite hindrances.
तो हम सभी के अपने से पसंदीदा निवरण होते हैं.
So the first thing is you need to identify them as they're happening.
तो सबसे पहली बात होती है कि जब वो हो रहे होते हैं या आपके ध्यान में आते हैं तो आपको उन्हें पहचानना पड़ता है.
You need to recognize that hindrances in your mind, huh?
अपने मन में आपको इन निवरणों को पहचानना पड़ता है.
And then you work to get rid of it.
और फिर उससे मुक्ति पाने के लिए आप कार्य करते हैं.
Unfortunately, an explanation of how you work is too lengthy.
तो लेकिन कार्य किस तरह से करना है इसका जो वर्णन है उसके लिए बहुत समय लगेगा.
And I'm not sure Bharti would be prepared to translate for that long.
और मुझे नहीं लगता है कि भारती उतना देर तक अनुवाद करने के लिए तैयार रहेगी.
But if you want to find out more about them, if you go to Free Buddhist Audio.
लेकिन अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो और फ्री बुद्धिस्ट ऑडियो पर आप जाते हो.
And if you just type in five hindrances, you'll find so many talks on that theme.
और अगर आप सिर्फ five hindrances इतना भी टाइप करते हो तो इसके ऊपर बहुत सारा आपको सामग्री मिल जाएगी.
And there's some very good talks by our teacher Sangharakshita on this theme.
और इस विषय पे हमारे गुरुजी संगरक्षिता उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रवचन दिए.
What meditation really is, for instance.
और उदाहरण उसमें से एक विषय है कि ध्यान क्या है.
So in that way you'll learn how to work with these hindrances.
तो एक तरह से आप उसमें से समझ पाओगे कि इन निवरणों के साथ कार्य कैसे करना है.
And to begin with, in meditation our main job is to get free from them.
और ध्यान में हमारा प्रमुख कार्य ये होता है कि इनसे हम मुक्ति पाएं.
Once you got free from them, you enter into these deeper meditative states.
और जब आप इनसे मुक्ति पा लेते हो तो आप फिर गहरी ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश करते हैं.
It's an important topic and it would be good to have an excellence retreat on that theme led by Jivak.
तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा विषय है और इस पे एक एक्सलेंस रिट्रीट होना चाहिए जिसका नेतृत्व जीवक करें.
With a little bit of help from his friends.
और अपने मित्रों से थोड़ी बहुत सहायता आपके साथ.
But it'd be good to explore the sort of theory of meditation practice a bit more fully and deeply.
लेकिन ध्यान का जो अभ्यास है उसका जो सिद्धांत है उसके और थोड़ा सा गहराई से देखना बहुत अच्छा होगा.
There are plenty of tools you can learn about and use to help you to deepen your meditation.
क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके बारे में आप जान सकते हो और अपने ध्यान में उनका उपयोग करके अपने ध्यान को गहरा कर सकते हो.
Maybe Ratnasambhava and Suchandra will lead a retreat here at Bhaja.
तो हो सकता है रत्नसंभव और सुचंद्र यहाँ पे भाजा में एक शिविर का नेतृत्व.
I'm tempted to commit them to making it, to doing it.
मुझे लालच हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे कुछ अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करे इस कार्य के प्रति समर्पण. और आकाश गीता भी आए मदद करने के लिए.
But it's important to, if you're going to meditate regularly, you do need a bit more structure and theory.
तो लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप नियमित ध्यान करने वाले हो तो आपको एक उसका ढांचा और उसके सिद्धांत पता हो.
We can give you the basics in a situation like
तो
this.
इस तरह के मतलब शिविरों में हम सिर्फ जो शुरुआती जानकारी है वो दे सकते हैं.
But if you're seriously interested in taking it further, it's good to talk more about these background issues.
तो लेकिन अगर आप नियमित अभ्यास के तौर पे गंभीरता से इसे लेना चाहते हैं तो इसके पार्श्व में ये जो विषय है इसके बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है.
Because there's a lot of experience in the Buddhist tradition of working with these things, of changing from the cyclic to the creative kind of conditionality.
क्योंकि बौद्ध परंपरा में इन चीजों को इन अनुभवों को लेके कार्य करने के विषय में बहुत है कि ये चक्राकार जो संस्कारितता है उससे हम ये विकसनशील संस्कारिता की ओर बढ़े.
One more.
Yes.
Just take this as the final one.
What is mind?
Oh.
And if there is mind, in which part of the body is it? And how does the mind arise?
Oh. Hmm. Well, we'll have to do some dissection to try and find out. Somebody got a scalpel? We'll experiment on Deepak.
तो मन को ढूंढने के लिए हमें शरीर की चीरफाड़ करनी पड़ेगी. हम जीवक के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं.
So remember what I was saying about abstraction concepts, huh?
तो याद रखिए कि मैं एक संकल्पना निर्माण करने के विषय में आपको क्या बता रहा था.
Mind is a concept.
तो मन भी ऐसी एक कल्पना या संकल्पना है.
There's no such thing as mind.
तो मन ऐसा कुछ भी नहीं होता है.
Since there's no such thing as mind, you won't be able to find it in the body.
तो एक वस्तु के स्वरूप में मन ऐसा नहीं होता है और इसलिए आपके शरीर में वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा.
This is a problem with concepts.
तो संकल्पनाओं के साथ यही समस्या होती है.
We don't know what we're doing when we use them.
तो जब हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे होते.
We mistake them for reality.
और हम ऐसे उनके विषय में समझते हैं कि वो वास्तव में कोई चीज है.
So what concept do is they generalize from experience and create an abstract concept.
तो संकल्पनाएं क्या करती है कि हमारे जो सामान्य अनुभव होते हैं उनको इकट्ठा लाती है और एक कल्पना का निर्माण करती है.
So the question really is, what experiences does the word mind abstract?
तो फिर प्रश्न ये है कि वो कौन से अनुभव है जिन अनुभवों को इकट्ठा करके मन कहा जाता है.
So the tradition says that well you can cut the cake in different ways, but it says that you can see it in terms of your immediate sensation.
तो परंपरा कहती है इसको आप बहुत तरह से जान सकते हैं लेकिन एक तरह से देखा जा सकते हैं कि आप अपनी तुरंत होने वाली संवेदनाओं से उसे देख सकते हैं.
You touch something and you feel the contact.
तो आप किसी चीज को स्पर्श करते हैं और उस संपर्क को आप महसूस करते हैं.
Well, that touch is mental.
तो ये जो स्पर्श है ये जो संपर्क है ये मानसिक है.
Then of course the touch leads to some feeling.
और ये जो स्पर्श होता है इससे कुछ भावनाएं निर्माण होती है.
You feel either that's a pleasant contact or an unpleasant one.
तो ये जो आपकी भावना हो सकती है या तो सुखद हो सकती है या फिर दुखद हो सकती है जो आपको इतनी पसंद नहीं आई.
Well, that is a mental experience.
तो ये जो आपका अनुभव होता है ये मानसिक अनुभव होता है.
Then you interpret that, you form a concept about it.
और फिर आप उसका विश्लेषण करते हो और उसके विषय में एक संकल्पना तैयार करते हो.
This is known as samya in the Buddhist tradition.
और इसे बौद्ध परंपरा में संज्ञा कहा जाता है.
It means something different from what samya means now.
तो संधियां का अभी जो अर्थ होता है इससे ये अर्थ अलग है.
It means this conceptualizing process, this interpreting process.
तो इसका अर्थ होता है कि ये जो आप चीजों को नाम देने की प्रक्रिया है, जैसे संकल्पनात्मक रूप में रखने की प्रक्रिया है.
That's a mental process.
तो ये प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया होती है.
Then desire arises, some wish arises.
फिर कुछ इच्छा निर्माण अंदर होती है.
That's a mental process.
और ये भी मानसिक प्रक्रिया होती है.
And then there's the awareness itself.
और फिर उसके बाद जागृति होती है.
There's the knowing of the object.
और वो चीज क्या है उसे जानते हैं हम.
Or the act of attention.
या उसके ऊपर ध्यान देने की हमारी कृति.
So mind, what we call mind, is simply a whole lot of different processes.
तो जिसे हम मन कहते हैं वो बहुत सारी प्रक्रियाओं का इकट्ठा आना है.
And all of these processes are constantly changing.
और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये निरंतर बदलते रहती है.
So yes, that is mind.
और यही मन है.
And in a way, even you could say that that mind isn't in the body.
और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मन कोई शरीर के अंदर नहीं होता है.
You could say that mind and body are two sides of the same thing.
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मन और शरीर एक ही चीज के दो पहलू हैं.
But this perhaps begins to take us into philosophical hot water.
लेकिन ये जो है हमें बहुत ही गर्म ऐसे तत्वज्ञानिक पानी में ले जाए.
उबला हुआ water.
उबला हुआ.
So perhaps I'd better come back into the cool.
तो इसलिए मैं ठंडे पानी में वापस आ जाता हूँ.
But in a way, it's as if the body is really the mind's objectification.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि शरीर जो है ये मन का वस्तुनिष्ठ स्वरूप है.
And the body, the mind is the inner dimension of the body.
और हम ऐसा कह सकते हैं कि मन जो है शरीर का एक आंतरिक पहलू है.
But I'll just leave you with that thought, and you can go away and philosophize if you like.
तो इस विचार के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ और आप जा सकते हो और इसके विषय में सोच के संकल्पना बना सकते हो.
But you can't really speak about the mind being in the body.
लेकिन आप इस तरह से बात नहीं कर सकते कि मन शरीर के भीतर होता है.
I remember this. I did study philosophy at college at university.
तो जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तब मैंने फिलोसॉफी का कुछ अभ्यास किया था.
And it was the sort of first question we would get asked.
और ये सबसे पहला सवाल होता था जो हमसे पूछा जाता था.
I remember the first question was, do flies feel pain?
तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि क्या मक्खियों को दर्द होता है.
And then, do dogs dream?
क्या कुत्तों को ख्वाब आते हैं.
And then, is the mind in the body or the body in the mind?
तो मन शरीर के अंदर है या शरीर मन के अंदर है.
But really, to answer all those questions, you need to do a lot of background exploration.
लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको बहुत सारे दूसरे भी मतलब स्पष्टीकरण देने होते हैं.
So perhaps the main thing I've said is, first of all, that recognize when you use a word like mind, you're abstracting from experience.
तो सब याद रखिए कि सबसे पहले जब आप मन ऐसे किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप अपने अनुभव को एक संकल्पनात्मक स्वरूप दिया गया शब्द का इस्तेमाल करते हो.
If you can really get this point, you'll sort out a lot of problems.
तो अगर आप इस बात को समझ सकते हो तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती.
If you can work out the relationship between reality on the one hand, experience on the one hand, and concepts on the other, you'll solve a lot of problems.
तो अगर आपके वास्तविक अनुभव एक और रखकर और संकल्पनाओं को एक और रखकर अगर आप कार्य कर सकते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं.
You'll see the value of words and concepts.
तो आप शब्दों की और संकल्पनाओं के महत्व को समझ सकते हैं.
And you'll see their limitation.
और आप उनकी सीमाओं को भी देख सकते हैं.
So that's the first point. When you use a word like mind, you think immediately there must be a mind somewhere.
तो ये सबसे पहली बात है क्योंकि जब हम मन ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम तुरंत सोचते हैं कि कोई वस्तु है जिसका नाम मन है.
I know I had it somewhere. Where was it?
तो मुझे पता है
कहीं under my chair.
थी और कहाँ चली गई.
Have you got my mind? But you sort of think of it like that. You think of it as something real and concrete.
तो आप उसके विषय में ऐसा सोचते हो जैसे वो वास्तव में उपस्थित है और उसका कुछ आकार है.
But it's not like that.
लेकिन वो ऐसा नहीं होता है.
So what is it?
तो फिर वो क्या है?
It's a word that covers a whole lot of processes.
तो वो एक शब्द है जिस शब्द में बहुत सारी प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है.
Those processes that we think of as mental.
और वो प्रक्रिया ऐसी है जिन प्रक्रियाओं के बारे में हम ऐसे सोचते हैं कि ये मानसिक प्रक्रिया
है. Every one of those processes is constantly in movement.
और हर इनमें से हर एक प्रक्रिया जो है वो निरंतर गति में होती है.
They're processes.
वो प्रक्रियाएं होती हैं.
And don't forget, in the Buddha Dhamma, there are no fixed things.
और ये मत भूलिए बौद्ध धर्म में कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो निरंतर वैसी ही रहती है.
Everything is process.
तो हर चीज एक प्रक्रिया होती है.
So what we call mind is a combination of processes.
तो जिसे हम मन कहते हैं वो अनेक प्रक्रियाओं का एक संच है.
So maybe we better finish there. This is getting into very hot water.
हम यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि ये बहुत उबलते हुए खोलते हुए पानी के और हम जा रहे हैं.
The sense that you know little bit of what I'm talking about.
लेकिन मुझे से लग रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है.
It's extremely important to get clear what we're doing when we think and when we speak.
तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम कुछ सोचते हैं और जब हम कुछ बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं.
One of the ways in which the Buddha's experience is described is as animitta.
तो बुद्ध के अनुभव को एक और तरह से वर्णन किया जाता है अनिमित्ता.
Nimitta in Pali and Sanskrit means a sign or a mark.
तो निमित्त संस्कृत और पाली में इसका अर्थ होता है एक चिन्ह प्रतीक.
In a way, you could even say it means a concept.
ऐसा भी आप कह सकते हो उसे संकल्पना.
Not that it's usually spoken like that, but you could say it does.
लेकिन इसी तरह से उसके बारे में बात नहीं करते लेकिन आप कर सकते हैं.
So the Buddha realizes that everything is anitya.
तो बुद्ध को इस बात की अनुभूति होती है कि हर चीज अनित्य है.
So he realizes that there's no nimitta.
तो वो इस बात को अनुभव करते हैं कि कोई भी निमित्त नहीं.
He sees everything as simply creative processes.
तो वो देखते हैं कि सारी जो बातें हैं वो केवल एक सृजक प्रक्रियाएं हैं.
And he experiences that as a tremendous sense of freedom.
और ये अनुभव करते वक्त उनके अंदर बहुत बड़ा ऐसे स्वतंत्रता का भाव होता है.
He's able to use concepts.
तो वो संकल्पनाओं का प्रयोग कर सकते हैं.
But he's not fooled by concepts.
लेकिन संकल्पनाएं उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकती.
They're just conventional expressions by which we communicate.
तो वो सिर्फ हमारे लिए एक सहायता प्रदान करने वाले बातों की तरह होते हैं जिनके माध्यम से हम चीजों के बारे में बात कर सकते हैं.
Anyway, bus, saluti, stop.
नासिक